नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले एक दशक में स्टार्टअप इंडिया मिशन से देश में आई नई क्रांति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीएम ई बस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष छूट प्रदान करने का केंद्र से किया आग्रह। राज्यपाल ने भारतीय लेखा परीक्षा सेवा के युवा अधिकारियों से कर्तव्यों के निर्वहन में दक्षता व पारदर्शिता लाने का किया आह्वान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार में आपसी तालमेल की कमी से प्रदेश की कार्यप्रणाली पूरी तरह चरमराई। और प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर ठाकुर ने कहा, परीक्षाओं में पारदर्शिता सहित समयबद्ध परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए आयोग प्रयासरत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम महज एक योजना नहीं बल्कि एक इंद्रधनुषी दृष्टि है जो विभिन्न क्षेत्रों को नए अवसरों से जोड़ती है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया मिशन महज 10 वर्षों में एक क्रांति बन गया है और इसने पूरे देश में एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
भारत के युवाओं का फोकस रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर है। हमारे वो यंग इनोवेटर्स जिन्होंने नए सपने देखने का साहस दिखाया, मैं उन सभी की बहुत बहुत सराहना करता हूं। 10 साल की ये जर्नी सिर्फ एक सरकारी स्कीम की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये आप जैसे हजारों लाखों सपनों की जर्नी है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दशक पहले भारत में 500 से कम स्टार्टअप्स थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि पीएम ई बस सेवा योजना के तहत पहाड़ी राज्यों को कोई छूट प्रदान नहीं की गई है, जिससे ई बसों के संचालन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को यह भी बताया कि पीएम ई बस सेवा योजना के तहत हिमाचल के केवल शिमला शहर को शामिल किया गया है, क्योंकि ये योजना 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में ही लागू होती है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पीएम ई बस सेवा योजना के तहत पहाड़ी राज्यों को छूट प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदल रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को प्रदेश की अन्य मांगों से भी अवगत करवाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भारतीय लेखा व लेखा परीक्षा सेवा के युवा अधिकारियों से कर्तव्यों के निर्वहन में दक्षता और पारदर्शिता लाने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने आज लोकभवन शिमला में भारतीय लेखा व लेखा परीक्षा सेवा 2025 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के साथ संवाद किया। उन्होंने लोक सेवा, जवाबदेही और शासन में सत्यनिष्ठा के महत्व पर अपने विचार साझा किए। शिव प्रताप शुक्ल ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने और सार्वजनिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने में लेखा व लेखा परीक्षा सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना जिला में हरोली विधानसभा क्षेत्र के पंजावर में 15,37,00,000 रूपये की लागत से बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष क्षेत्र में करीब 2,500 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि क्षेत्र में बेहतर यातायात सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सड़कों के व्यापक नेटवर्क को और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरोली के रोड़ा में 5 करोड़ रुपए की लागत से ऑटोमेटिक वाहन परीक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार के भीतर आपसी तालमेल नहीं है, जिससे प्रदेश की कार्यप्रणाली पूरी तरह चरमरा गई है। कुल्लू में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि नेतृत्व में अनुभव की कमी के कारण सरकार को अधिकारियों से काम लेना भी नहीं आ रहा है, जिसका सीधा असर प्रशासन और जनहित के कार्यों पर पड़ रहा है।
अधिकारियों के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना गैर जरूरी है। सरकार में आप हैं, कोई अधिकारी काम नहीं करता है, कोई अधिकारी गलत काम करता है, नियम के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, वो कार्रवाई करो ना। कुछ एक अधिकारी मुख्यमंत्री के इतने करीब हो गए हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री को उंगली पर नचाना शुरू कर दिया है। वर्तमान जो कांग्रेस की सरकार इस प्रकार से जो चल रही है, उनके बस की अब न अधिकारियों को चलाने का रह गया है, न अधिकारी अब उनकी सुनते हैं, न उनकी बात को मानते हैं और न ही पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकार की जिम्मेवारी जो विकास करने की है, काम करने की, उसको पूरा कर पा रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर ठाकुर ने कहा है कि आयोग परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के साथ साथ समयबद्ध परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी शिमला से बातचीत में आज उन्होंने कहा कि आयोग ने हाल ही में ली गई एचएएस की परीक्षा का परिणाम रिकॉर्ड 6 माह के भीतर घोषित किया है, जो आयोग के इतिहास में पहली बार हुआ है।
परीक्षा की एडवर्टाइजमेंट करने से लेकर और उसका फाइनल परिणाम निकलने तक हम कोशिश करते हैं कि 6 महीने में पूरी की पूरी प्रक्रिया हम पूरी कर सकें और उसमें हम काफी हद तक अब सफल भी हो चुके हैं। अभी हाल ही में हमने एचएएस की एक परीक्षा ली थी, शायद पहली बार ऐसे हुआ है कि जिस साल में हमने परीक्षा एडवर्टाइज की, एग्जाम करवाए, उसी साल में हमने एचएएस का फाइनल परिणाम निकालकर सरकार को उसकी रिकमेंडेशन भी भेज दी है, जो फर्स्ट टाइम कमीशन के इतिहास में हुआ है। हमने एचएएस 2025 का प्रीलिम एग्जाम जून महीने में किया था और हमने दिसंबर के आखिर में उस एचएएस परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इसी प्रकार हमने बाकी एग्जाम्स को भी एक टाइम बाउंड शेड्यूल में बांधने की कोशिश की है और हम उस शेड्यूल को बड़े रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं।
रामेश्वर ठाकुर ने ये भी बताया कि आने वाले समय में आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समावेश किया जाएगा, ताकि प्रश्न पत्रों में पुनरावृत्ति और पेपर लीक की संभावना न रहे। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में बागवानी क्षेत्र में उत्पाद विपणन प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए सहकारी समितियों को मजबूत किया जाएगा। वे आज सोलन जिला के नौणी स्थित डॉ वाईएस परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। राजस्व मंत्री ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से न केवल उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि विपणन अधोसंरचना को गांव-गांव तक पहुंचाया जा सकता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला से प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के दल को एक्सपोजर विजिट के लिए रवाना किया। यात्रा के दौरान बच्चों को चंडीगढ़, अमृतसर और बाघा बॉर्डर जैसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक महत्व के स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक्सपोजर प्रदान करना है।
शिक्षा विभाग का समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट के द्वारा लगभग कोई 90 बच्चों का दल भ्रमण में अमृतसर तक जाएगा और इसमें हमारे स्पेशल नीड के बच्चे हैं और इनको वहां भेजा जाएगा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले एक दशक में स्टार्टअप इंडिया मिशन से देश में आई नई क्रांति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीएम ई बस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष छूट प्रदान करने का केंद्र से किया आग्रह। राज्यपाल ने भारतीय लेखा परीक्षा सेवा के युवा अधिकारियों से कर्तव्यों के निर्वहन में दक्षता व पारदर्शिता लाने का किया आह्वान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार में आपसी तालमेल की कमी से प्रदेश की कार्यप्रणाली पूरी तरह चरमराई। और प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर ठाकुर ने कहा, परीक्षाओं में पारदर्शिता सहित समयबद्ध परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए आयोग प्रयासरत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।